ये हफ्तावार बाइबल का दसवां प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानिब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 5 अप्रैल 2020 बरोज़ इतवार हफ्ता के अख्ताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून गैर वाकियत, सुनहरी मतन करंथियों। खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका ताकि खुदा की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। जवाबी मतालिया जबूर। मैं खुदावन के बारे में कहूँगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा। तू ना रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। पर तू ऐ खुदावन मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कन बनाया, तुझ पर कोई आफत ना आएगी और कोई वबा तेरे खैमे के नज़दीक ना पहुँचेगी, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। दरसीवाज बाइबल में से याकूब। हर अच्छी बख्शिश और हर अच्छा इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ सकता है। जबूर। खुदा हमारी पनाह और कुवत है, मुसीबत में मुस्तईद मददगार, इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं, खा जमीन उलट जाए और पहाड़ समंदर की तय में डाल दिए जाएं, खा उसका पानी शोर मचाए और मौजजन हो और पहाड़ उसकी तगयानी से हिल जाएं। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी खुदा ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बश ना होगी, खुदा सुबह सवेरे उसकी कुमक करेगा। मरकस। और यीशु अपने शागिर्दों के साथ झील की तरफ चला गया, क्योंकि उसने बहुत लोगों को अच्छा किया था, चुनाचे जितने लोग सख्त बीमारियों में गिरफ्तार थे उस पर गिरे पड़ते थे कि उसे छू लें। मरकस। जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई, और इबादत खाने के सरदारों में से एक यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की, मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख कि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है। जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा, खौफ ना कर, फक्त एतकाद रख। और वो इबादत खाने के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुलड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं, और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल मचाते और रोते हो, लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको बाहर निकालकर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, ऐ लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। वो लड़की फिलफौर उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। इस पर लोग बहुत हैरान हुए। मरकस। फिर वो वहां से निकलकर अपने वतन में आया। यूहन्ना। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए, और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना है और फैसला करना है, लेकिन जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है और जो मैंने उससे सुना वही दुनिया से कहता हूँ। बस यसू ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम के से काम करते, लेकिन अब तुम मुझ जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो जिसने तुमको वही हक की बात बताई जो खुदा से सुनी। इब्राहिम ने तो ये नहीं किया था। तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए मगर यीशु छुपकर उनके बीच में से हैकल से निकल गया। इफिसियों, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। यूहन्ना, और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्रंथियों, बेईमानों के साथ ना हो वर जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत? मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफ़िकत या ईमानदार का बेईमान के साथ क्या वास्ता? और खुदा के मक़दिस को बुतों से क्या मुनासबत है? क्योंकि हम जिंदा खुदा का मक़दिस हैं, चुनाचे खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। ये खुदावंद कादर मुतलक का कौल है। इफ़सियों, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों और शरारत की उन फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। अब मैं मेरी बेकर रेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खुदा और उसकी तख्लीक में पाई जाने वाली सारी हकीकत हम आहंग और अब्दी है। जो कुछ वो बनाता है अच्छा बनाता है और जो कुछ बना है उसी ने बनाया है। हस्ती की हकीकत और तरतीब को उसकी साइंस में थामने के लिए वो सब कुछ हकीकी है। उसके इलाही असूल के तौर पर आपको खुदा का तसव्वुर करने की इब्तिदा करनी चाहिए। रूह, जिंदगी, सच्चाई, मोहब्बत यकसानियत में जुड़ जाते हैं और ये सब खुदा के रूहानी नाम हैं। सब मवाद, जहानत, हिकमत, हस्ती, लाफानियत, वजह और असर खुदा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये उसकी खसूसियात हैं, यानी लामतनाही, इलाही असूल, मोहब्बत के अब्दी इजहार। कोई हिकमत अकलमंद नहीं सिवाय उसकी, कोई सच्चाई सच नहीं, कोई मोहब्बत प्यारी नहीं, कोई जिंदगी जिंदगी नहीं, ماں سوائے الہی کے کوئی اچھائی نہیں، ماں سوائے اس کے جو خدا بخشتا ہے۔ یہاں صرف ایک بنیادی وجہ ہے، اس لیے کسی اور وجہ کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اور یہاں صفر میں کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی جو اس اعلیٰ اور واحد وجہ سے ماخوذ نہیں ہو سکتی۔ گناہ، بیماری اور موت ہستی کی سائنس سے تعلق نہیں رکھتے، یہ غلطیاں ہیں جو سچائی، زندگی یا محبت کا قیاس کرتی ہیں۔ بعض اوقات ہمیں یہ ایمان رکھنے کی ہدایت دی جاتی ہے کہ تاریکی نور ہی کی مانند حقیقی ہے، مگر سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ تاریکی محض اس روشنی کی غیر موجودگی کا ایک فانی فہم ہے جس کے آنے سے تاریکی حقیقت کی شکل کھو دیتی ہے۔ پس گناہ اور رنج، بیماری اور موت، زندگی خدا کی فرضی غیر موجودگی کی علامات ہیں، اور یہ سچ اور محبت کے سامنے غلطی کے سائے کی مانند بھاگ جاتے ہیں۔ مادی خودی میں ڈوب کر ہم زندگی اور عقل کے مادے کو ہلکا سا منقص کرتے ہیں اور اسے جان لیتے ہیں۔ مادی خودی سے انکار انسان کی روحانی اور ابدی انفرادیت سے متعلق جاننے میں مدد دیتا ہے، اور مادے سے یا جنہیں مادی حواس کی اصطلاح دی گئی ہے ان کے وسیلہ غلط علم کو تباہ کرتا ہے۔ یہاں چند غلط مفروضوں پر غور کرنا چاہیے تاکہ روحانی حقائق کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ ایمان کا پہلا غلط مفروضہ یہ ہے کہ مواد، زندگی اور ذہانت خدا سے الگ قسم کی چیزیں ہیں۔ دوسرا غلط مفروضہ یہ ہے کہ انسان ذہنی اور مادی دونوں ہے۔ تیسرا غلط مفروضہ یہ ہے کہ عقل نیکی اور بدی دونوں ہے، جبکہ حقیقی عقل بدی ہے نہ بدی کا آلہ ہے، کیونکہ عقل خدا ہے۔ چوتھا غلط مفروضہ یہ ہے کہ مادہ ذہین ہے، اور یہ کہ انسان کے پاس مادی جسم ہے جو اس کے خود کا حصہ ہے۔ پانچواں غلط مفروضہ یہ ہے کہ مادہ خود کے اندر زندگی اور موت کے مسائل سمائے رکھتا ہے، کہ مادہ نہ صرف خوشی اور درد کا تجربہ کرنے کے قابل ہے بلکہ ان جذبات کو مہیا کرنے کے قابل بھی ہے۔ اس آخری مفروضے سے مضمر ہونے والی فریب نظری موت کی اصطلاح پانے والے فانی بدنوں کی تباہی کو جنم دیتی ہے۔ عقل کھوپڑی کے اندر اب اور ہمیشہ کے لیے گناہ کرنے کی قوت رکھنے والی ہستی نہیں ہے۔ ہمیں اسے حقیقت کہتے ہوئے شرمندگی محسوس کرنی چاہیے، جو اصل میں ایک غلطی ہے۔ بدی کی بنیاد خدا کے علاوہ کسی اور چیز پر ایمان رکھنے سے پڑتی ہے۔ ایسا ایمان صرف سچائی کے دعووں کی تائید کرنے کی بجائے دو مخالف قوتوں کی حمایت کرنے کا رجحان رکھتا ہے۔ ایسا سوچنے کی غلطی کہ جب سچائی غیر حاضر ہوتی ہے تو غلطی حقیقی ہو سکتی ہے، غلطی کی برتری پر ایمان رکھنے کی جانب لے جاتی ہے۔ فریب زدہ حواس ان کے مخالفین کے ساتھ سرابوں کا تصور کر سکتے ہیں، مگر کرسچن سائنس میں سچائی غلطی کے ساتھ کبھی ضم نہیں ہوتی۔ عقل کا مادے کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اسی لیے سچائی بدن کی بیماریوں کو دور کرنے کے قابل ہے۔ کرسچن سائنس مادی دور پر طلوع ہونے کا نام ہے۔ ہستی کے بڑے روحانی حقائق روشنی کی کرنوں کی مانند تاریکی میں چمکتے ہیں، اگرچہ تاریکی انہیں نہ سمجھتے ہوئے ان کی حقیقت سے منکر ہو سکتی ہے۔ خدا کا حقیقی خیال زندگی اور محبت کا سچا فہم ادا کرتا ہے، فتح کی قبر لوٹ لیتا ہے، ساری بدی اور فریب کو دور کر دیتا ہے کہ یہاں اور بھی عقلیں ہیں، اور لافانیت کو نیست کرتا ہے۔ دراصل یسوع نے کہا، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا، یعنی وہ جو زندگی کا حقیقی تصور پا لیتا ہے وہ موت پر اپنا ایمان کھو دیتا ہے، جس کے پاس نیکی کا حقیقی تصور ہے وہ بدی کا سارا فہم کھو دیتا ہے، اور اس وجہ سے روح کے نہ مرنے والے حقائق میں رہنمائی پاتا ہے۔ ایسا شخص زندگی میں قائم ہوتا ہے، ایسی زندگی جو زندگی کو سہارا نہ دینے کے قابل بدن سے نہیں بلکہ اس سچائی سے حاصل کی گئی ہو جو خود کے لافانی خیال کو آشکار کرتی ہے۔ آسمان پر جانے کا واحد رستہ ہم آہنگی ہے، और मसीह इलाही साइंस में हमें ये रास्ता दिखाता है। इसका मतलब खुदा, अच्छाई और उसके अक्स के अलावा किसी और हकीकत का ना जानना, जिंदगी के किसी और ज़मीर को ना जानना है और नामनिहाद दर्द और खुशी के एहसासात से बरतर होना है। साइंस से मुतहरक एतमाद इस हकीकत में पिनहा है कि सच्चाई हकीकी है और गलती गैर हकीकी है। गलती सच्चाई के सामने बुजदिल है। जब हम गलती से ज़्यादा जिंदगी की सच्चाई पर ईमान रखते हैं, मादे से ज़्यादा रूह पर भरोसा रखते हैं, मरने से ज़्यादा जीने पर भरोसा रखते हैं, इंसान से ज़्यादा खुदा पर भरोसा रखते हैं, तो कोई मादी मफरूज़े हमें बीमारियों को शिफा देने और गलती को निस्त करने से नहीं रोक सकते। इंसान से मुतलक इन दो नज़रियात में से आप किसे कबूल करने के लिए तैयार हैं? एक फ़ानी गवाही है जो तब्दील होती, मरती और गैर हकीकी है। दूसरी अब्दी और हकीकी शहादत है जिस पर सच्चाई की मोहर सब्त है, इसकी गोद लाफानी फलों से लदी हुई है। जब बीमारी या गुनाह का भरम आपको आजमाता है तो खुदा और उसके ख्याल के साथ मजबूती के साथ मुंसलिक रहें। उसके मिजाज के अलावा किसी चीज़ को आपके ख्याल में कायम होने की इजाज़त ना दें। किसी खौफ या शक को आपके इस वाजिया और मुतमिन भरोसे पर हावी ना होने दें कि पहचाने ज़िंदगी की हम माँगी जैसे कि ज़िंदगी अजल से है, इस चीज़ के किसी भी दर्दनाक एहसास या यकीन को तबाह कर सकती है जो ज़िंदगी में है ही नहीं। जिस्मानी हिस्स की बजाय क्रिश्चियन साइंस को हस्ती से मुतलक आपकी समझ की हमायत करने दें और ये समझ गलती को सच्चाई के साथ उखाड़ फेंकेगी, फ़ानियत को गैर फ़ानियत के साथ तब्दील करेगी और खामोशी की हम मांगी के साथ मुखालफत करेगी। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फ्राइज पढ़ूंगा। रोजमर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फर्ज है कि हर रोज ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, जिंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महजाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरी साइशों की अकासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मजम्मतों, इसलाहों, गलत तासरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का यह फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ ख़ुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़र्ज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।